हरे कृष्ण। सभी उपस्थित भक्तजनों का भागवतम क्लास में स्वागत है और मेरा सादर प्रणाम। मुझे बहुत खुशी है ये देख के कि यहाँ इतने सारे भक्त हिंदी की क्लास के लिए जमा हो रहे हैं, क्योंकि 1984 में मैंने ये हिंदी की क्लास यहाँ पहली बार शुरू की थी और उस समय हमारे पास 2 या 3 भक्त लोग हिंदी की क्लास में आते थे। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है कि सब आगे आगे को आ जाएं। मैं किसी को नहीं काटूंगा, क्योंकि पीछे बाद में आने वाले लोग आगे आने से कतराते हैं, पीछे आके चुपचाप बैठ जाते हैं। माताएं भी जिनके अपने अपने पर्टिकुलर स्थान है वो वहां से नहीं हटना चाहते, कोई बात नहीं, पीछे वाले आगे आ जाओ उठ के। ज्यादातर सब मंदिरों में ऐसा होता है, कुछ लोग एक ही स्थान पे आके बैठते हैं, उनको रोज उसी स्थान पे जो पत्थर की टाइल लगी हुई है वो वाली टाइल पे ही उनको बैठना है। कुछ बुराई नहीं है उसमें, लेकिन होता है अपने मंदिर का स्वभाव, आदत हो जाती है और उनको वहीं बैठ के आनंद आता है। आज हम चौथे स्कंद में 28वें अध्याय से 8वां श्लोक ले रहे हैं। कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है इसमें, तो जिस किसी के कुछ भी प्रश्न हो चौथे स्कंद में से, श्रीमद् भागवतम में से जो बताया जा रहा उसमें से, नहीं तो जो बताया नहीं जा रहा उसमें से, या भगवद गीता में से, या चैतन्य चरितामृत में से, सब पूछ सकते हैं। आज आपको प्रश्नोत्तर का भरपूर समय मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में कुछ खास है नहीं, और नहीं तो हम अगला श्लोक ले लें, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पच्छालान् अरिदूषिता दुरंत चिंताम आपन्नः न लेभे तत प्रतिक्रियाम। आत्मानाम कन्यया ग्रस्तम, पश्चालानि नारिदूषितान् दुरंतचिन्तामापन्नो न लेबे तत्प्रियाक्रिया। आत्मानम् अपने आप को कन्यया काल कन्या द्वारा ग्रस्तम अलिंगित पाश्चालान पांचाल अरिदूषितान शत्रुओं से दूषित दुरंत अलंघ्य चिंताम चिंता आपन्न प्राप्त करके नहीं लेबे प्राप्त किया तत् उसका प्रतिक्रिया उपाय। अनुवाद। जब राजा पुरंजन ने देखा कि उसके परिवार के समस्त प्राणी, उसके संबंधी अनुचर, दास, मंत्री तथा अन्य सभी उसके विरुद्ध हो गए हैं, तो वह अत्यंत चिंतित हुआ, किंतु उसे इस स्थिति से छूटने का कोई उपाय न दिखाई दिया, क्योंकि वह काल कन्या द्वारा बुरी तरह परास्त कर दिया गया था। प्लीज रिपीट। जब राजा पुरंजन ने देखा कि उसके परिवार के समस्त प्राणी, उसके संबंधी अनुचर, दास, मंत्री तथा अन्य सभी उसके विरुद्ध हो गए हैं, तो वह अत्यंत चिंतित हुआ, किंतु उसे इस स्थिति से छूटने का कोई उपाय न दिखाई दिया, क्योंकि वह काल कन्या द्वारा बुरी तरह परास्त कर दिया गया था। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की। जब मनुष्य वृद्धावस्था के कारण निर्बल हो जाता है, तो परिवार के सदस्य, नौकर तथा मंत्रीगण उसकी परवाह नहीं करते, तब वह इसका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं रहता, वह अधिकाधिक चिंतित होता है और अपनी दयनीय स्थिति पर पछताता रहता है। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। हम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं गुरं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातां सगना ललिता श्री विशाखावितांश्च तत्रत्वं सार्वदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे राम 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 हरे हरे। पीछे से लोग आके डोर से वापस जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अंदर बैठने की जगह नहीं है और यहाँ आगे बहुत जगह है। प्लीज आगे आगे आ जाइए। अब मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं नहीं डांटूंगा किसी को, इसलिए आगे आगे आ जाएं। माता जी लोग भी आगे बहुत जगह है, प्लीज कृपा करके आगे आ जाइए। आपके वृंदावन में इस समय बहुत सारे भक्त आए हुए हैं और सब क्लास में आना चाहते हैं, और यहाँ पे हॉल में जगह होते हुए भी वो लोग बाहर से वापस जाना पड़ रहा है उनको। जब मनुष्य वृद्धावस्था के कारण निर्बल हो जाता है तो परिवार के सदस्य, नौकर तथा मंत्रीगण उसकी परवाह नहीं करते। कई साल पहले नवगेंद्र स्वामी अभी भी यहाँ आए हुए, उन्होंने ये कथा बताई थी इसके बारे में कि एक बहुत बड़ा एडवोकेट था, वकील, और उसके पास सीनियर वकील था, तो उसके पास हजारों केस थे। कभी किसी की डेट आती थी, कभी किसी का स्टे आता था, कभी किसी को एक्सटेंड करते थे, तो वो सब कुछ देखता था, कार्यभार संभालता था। एक दिन उसके ऑफिस में बैठे हुए जब वो काम कर रहा था तो अंत समय आ गया। अंत समय आ गया तो यमदूत उसके आगे आके खड़े हो गए, और यमदूतों ने कहा कि रख दो कलम, हम आपको ले जाने वाले। कि क्या, कौन हो तुम लोग, बिना इजाजत के मेरे ऑफिस में कैसे आ गए? मेरा ऑफिस तो खुला भी नहीं है सुबह के 6 बजे। अभी हम यमदूत हैं, यमराज ने हमें भेजा है, आपका अंत समय आ गया है, आपको अभी हमारे साथ चलना होगा। वकील, ये कौन सा तरीका है? तुम्हें मालूम है कितने केस मेरे पेंडिंग है कोर्ट में? हजारों केस। ये देखा है फाइल का गट्ठा, ये केवल आज के केस है। मैं चला जाऊंगा तो कौन ये केस करेगा? और तुम लोग ऐसे कैसे आ सकते हो? हम तो जब भी किसी को कोर्ट में भी बुलाते हैं तो पहले नोटिस भेजते हैं, उसका जवाब आता है, एक्नॉलेजमेंट आता है, तब हम किसी को। यमदूतों ने कहा कि आज आपका न्याय बड़ी कोर्ट में होने वाला है, आपको हम दूसरी कोर्ट में ले जाने वाले हैं। ये कोर्ट में कैसे ले जाओगे तुम मुझे? कोई नोटिस तो आया नहीं, एक भी नोटिस नहीं भेजा, एकदम से लेने आ गए कि कोर्ट चलो। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ वापस। यमदूतों को डांट के वापस भेज दिया। यमदूत यमराज के पास गए कि वो जो वकील साहब हैं वो तो नोटिस डिमांड कर रहे हैं। कह रहे कोई नोटिस नहीं भेजा, बिना नोटिस के वो किसी छोटे मोटे मुवक्किल जो मजदूरी का काम करता है, गरीब है, कुछ भी है, उसको भी नहीं वो एक्सपेक्ट करते कि कोर्ट में आ जाएगा। कोर्ट किसी के रास्ते में थोड़ी ही पड़ी है कि हाँ शायद आज मेरा नंबर नहीं लगा हो, जाके देख लूं। वो तो नोटिस मिलेगा तभी आएगा। तो तुम एकदम से मुझे कोर्ट में ले जाने के लिए बिना नोटिस दिए आ गए, उसने हमें वापस भेज दिया है। तो यमराज ने पूछा कि वो वकील क्या कर रहा था वहां, कि वो लिख पढ़ रहा था अपना टेबल पे, चेयर पे बैठे अपना लिख पढ़ रहा था कि तुम लोग गए तो उसने चश्मा लगाया कि हाँ चश्मा लगाया हुआ, लेकिन हमें देखने के लिए, हमें बात करने के लिए चश्मा उतार लिया। तो यमराज ने पूछा कि तुमने पूछा उससे कि चश्मा क्या मां के पेट में से लगवा के आया था, जन्म से लगा है? उसके कोई सफेद बाल थे? बाल कुछ सफेद हुए कि हां जी उसके तो बहुत सारे बाल सफेद। तो जाके बता दो उसको कि हर सफेद बाल हमारा नोटिस था, हमने तो सैकड़ों नोटिस भेजे। वो तो लोगों को कोर्ट में बुलाने के लिए एक नोटिस भेजता है, ज्यादा ज्यादा दो भेज देता होगा। हमने सैकड़ों नोटिस उसको भेजे, जब आंखों की दृष्टि कमजोर होने लगी, वो हमारा नोटिस था कि अब परलोक की तैयारी करो। जब पहला बाल सफेद आया, वो हमारा नोटिस था अब परलोक की तैयारी करो। उसको ऊपर से काला कर देने से वो नोटिस नहीं चला जाएगा। बहुत से लोग ऊपर से काला करे रहते हैं, अभी रिसेंटली भी कई बार ऐसा होता है, कोई मुझे मिलवाता, प्रभु जी ये मेरे बड़े भाई हैं। मैं बड़े भाई है, बड़े तो आप लग रहे हो। नहीं जी, इन्होंने बाल काले किए हुए हैं। छोटा भाई बड़ा लग रहा है क्योंकि उसने बाल काले नहीं किए, बड़ा भाई छोटा लग रहा है क्योंकि उसने बाल काले किए। और एक बार तो प्रभु जी उनके बाल सारे सफेद, एक भी काला नहीं, अपनी पत्नी को लेके आए, सारे बाल बिल्कुल काले। मुझे लगा इनकी पुत्री होगी। नहीं जी, इसने बाल काले किए हुए। तो एक एक बाल, एक एक दांत, हर चीज में हमारा नोटिस है। ये कथा जो है पुरंजन की, ये एक नगर की है जिसमें 9 द्वार हैं। कौन सा नगर होता है 9 द्वार वाला? हमारा शरीर। और जब किसी नगर पे आक्रमण करना हो तो सेना कहां आक्रमण करती है? द्वार पे। तो ये काल कन्या वास्तव में काल ही है, टाइम है, समय है। समय हम सबको ले जाएगा, शरीरों को तो ले ही जाएगा। आत्मा को कुछ नहीं कर सकता। तो जब वो समय वो काल आक्रमण करता है तो शरीर के उन द्वारों पर आक्रमण करता है। दो द्वार ये रहे, यहां पे आक्रमण, एक द्वार ये रहा, ये मुंह मेनली दो कामों के लिए, खाने पीने के लिए और बात करने के लिए, उसके ऊपर आक्रमण करता है। ऐसा बताया गया है कि 9 में से 5 छिद्र जो हैं वह पूर्व की तरह उनकी दिशा है, पूर्व की तरह, ये 2, ये 4 और ये 5, और एक उत्तर और एक दक्षिण, ये दोनों, और बाकी के 2 पश्चिम नीचे की तरफ। जब भी आक्रमण होगा इन्हीं पे होगा, बाकी के शरीर पे आक्रमण कम होता है, आक्रमण का असर भी हमारे शरीरों पे कम होता है, अनलेस के वो आक्रमण इन 9 द्वारों में से किसी द्वार पे हो जाए। जैसे कि कहते हैं कि कॉमन कोल्ड, सर्दी जुखाम कैसे फैलता है, छुआछूत से। अगर जो किसी की सर्दी के कीटाणु आपके हाथ में लग जाए तो आपको जुकाम हो जाएगा, नहीं होगा। पैर में लग जाए तो, पेट में लग जाए तो, ये 9 द्वार में से किसी में भी लग जाए तो बस फिर जुकाम हो गया समझो। वो कीटाणु 9 द्वार में से कहीं भी लग जाए जुकाम हो गया। जब तक वो किसी 9 द्वारों में से किसी द्वार को नहीं लगे कीटाणु, तब तक ये शरीर सुरक्षित है उस कीटाणुओं से, वायरस वगैरह। हवा में भी जो फैलने वाले कीटाणु या बीमारी होती हैं वो भी जब तक किसी की नाक के अंदर नहीं उतर जाए उससे बीमार नहीं होता, जब वो नाक के अंदर उतर जाए तो ये गेट, ये नोटिस आने के साधन है। अपच, खाया पिया पचता नहीं, कोई चीज रेगुलर नहीं है, आंखों पे चश्मे, मुंह में नकली दांत या डेंचर, या दांतों की परेशानी, एक में कीड़ा, दूसरे में पायरिया, तीसरे में रूट कनाल, नेवर एंडिंग। जो यंग लोग बड़े मुस्कुरा के दिख रहे हैं उन्होंने ये सब नाम नहीं सुने, लेकिन कुछ ही समय बाकी है, आपके सबके नंबर लगने वाले हैं। ये तो नंबर कब लगेगा, बस अगर लगेगा, ऐसा नहीं होता क्या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? नहीं, होना तो है, कब होगा बस ये होगा तो वही। तो महाराज पुरंजन अपने 9 द्वार वाली पुरी में निवास कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। पत्नी का क्या नाम? पुरंजनी। और पुरंजनी कौन है? पुरंजनी ये बुद्धि बुद्धि अविद्या या मंद बुद्धि पूरी तरह से है जो डेवलप नहीं है। पूरी तरह से डेवलप कैसे होगी? जब वैराग्य का रास्ता पकड़ के भक्ति के मार्ग की तरफ जाएगी। तो ये कथा सुना रहे हैं नारद मुनि, किसको सुना रहे हैं? प्राचीन बरही को। और प्राचीन बरही महाराज पृथु के लाइन में आते हैं, क्या कहते हैं, परिवार में, परिवार वंशज। ये महाराज पृथु के वंशज हैं। प्राचीन बरही, दूसरा नाम इनका बरहिसत है। इनके 10 पुत्र हैं, फेमस प्रचेता। वो तो तपस्या के लिए चले गए और महाराज प्राचीन बरही उनको कर्मकांड, परोपकार, हिंदू बुद्धि, उससे आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे बहुत सारे हिंदू आजकल होते हैं, अगर धार्मिक भी हैं, अपने आप को धार्मिक भी कहते हैं, मानते हैं, तो भी उसका क्या अर्थ है? बस जी मंदिर कर चले जाते हैं, दर्शन कर आते हैं जी, हाथ जोड़ जाते हैं जी, बस। और क्या बाकी मांग लेते हैं कुछ? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय चिट्टे नोट हरे। और अगर नहीं मिले तो क्या करते हैं जी? धमकी दे आते हैं भगवान को, मात पिता तुम मेरे जब तक नोट धरो, नहीं तो मैं जाऊंगा शिव के द्वारे, और नहीं तो जाऊंगा माता के द्वारे, जल्दी जेब ढीली करो, ओम जय चिट्टे नोट हरे। ये आम धार्मिक व्यक्ति, उसको ये भौतिक आवश्यकताओं से आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि मैं अपना भला कैसे कर लूं, किसी दूसरे का भला कैसे कर लूं, उसको कपड़ा देके, उसको रोटी देके, परोपकार, और मैं कैसे अपना स्वर्ग में स्थान बना लूं। अरे भैया, स्वर्ग में स्थान भी बन जाएगा तो कब तक के लिए स्वर्ग जाओगे? स्वर्ग से वापस भी तो यहीं आओगे, तो क्यों नहीं ऐसे स्थान पे जाने की कोशिश करते जो आपका घर है, जहां से वापस यहां नहीं आना पड़े। तो ये आगे वाली चीज जो है, इसको कहते हैं भक्ति। और बाकी धार्मिकता, रिलिजियोसिटी, इंग्लिश में कह सकते हैं रिलिजियोसिटी, और आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता से अर्थ है कि हम अपने आप को ये रिकग्नाइज कर रहे कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। अब भगवान ने ये शरीर मुझे दिया है और उस शरीर के लिए बाकी सब रोटी कपड़ा और मकान का अरेंजमेंट भी करके दिया है, नहीं करके दिया तो चलो मांग लो भगवान से, किससे मांगोगे? और लेकिन जब रोटी कपड़ा और मकान का अरेंजमेंट करके दिया हुआ है तो हमें भगवान से रोटी कपड़ा और मकान से आगे की चीज मांगनी चाहिए। क्या है उससे आगे? कृष्ण प्रेम। कैसे? मैं इस संसार सागर से मुक्त हो जाऊं, या किस तरह से मैं भगवान की सेवा में वापस चला जाऊं। अभी मैं किसकी सेवा में हूं? अपनी इंद्रियों की, अपनी इंद्रियों की सेवा में। मुझे अपनी इंद्रियों की सेवा से निकल के वापस भगवान की सेवा में जाना है। बिकॉज जीवन स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। अगर जो हम वो हमारी जो नित्य दासता है उससे हट जाते हैं तो रहेंगे तो फिर भी दास ही, मालिक तो हम बनने वाले नहीं। तो या तो करेंगे सेवा भगवान की या करेंगे अपनी इंद्रियों की, दूसरे लोगों की, देश की, समाज की, गरीबों की, किसी ना किसी की तो करेंगे। कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के बाद भी कभी कभी मन में कोई भौतिक प्रार्थना रह जाती है किसी किसी के। मोर अभिला अमेरिका में होवा नया नेरी बसादा डॉलर बिल राशि। लेकिन ये टाइम, ये स्पिरिचुअलिटी, ये भक्ति, ये सब चीज से ऊपर उठने का नाम। हमें अमेरिका में वास नहीं चाहिए। कहां वास चाहिए? कहीं भी। मोर अभिला विलास कुंज दियो बा नया नेहरी बसादा जुगल उपरासी। वृंदावन कहाँ है? वृंदावन वहां है जहां जुगल रूप राशि, जहां आपको भगवान मिले। कुछ भी देख के, हर चीज देख के भगवान की याद आए, भगवान का संग प्रतीत हो, वो वृंदावन। अगर वो हमें वृंदावन में नहीं हो रहा तो ये वृंदावन आना हमारा बेकार है, और अगर वो हमें वृंदावन से बाहर हो रहा है तो वो भी वृंदावन है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे विचार नहीं है, श्रील प्रभुपाद के विचार है। तो मेन बात वृंदावन में या धाम में निवास करना नहीं है, मेन बात हमारे हृदय में वृंदावन है। तो हम जहां कहीं भी हैं वही वृंदावन है। हर स्थान पे भक्त के लिए वृंदावन। तो यहां पे ये बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, अनुवाद में भी महर्षि मैत्रेय ये बता रहे हैं और तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वृद्धावस्था में जब ये शरीर निर्बल हो जाता है तो कोई परिवार के सदस्य भी सीरियसली नहीं लेते। जैसे कि एक व्यक्ति जो काम करके रोज ओवरटाइम करके लेट रिटर्न होकर आ रहे हैं और घर में आते हैं तो किसी को पता नहीं चलता कि वो आ गए। क्यों? क्योंकि टीवी ऑन है, सबका ध्यान तो टीवी में, आजकल तो टीवी से ज्यादा बुरी बीमारियां आ गई, लेकिन ये पुराना वो है, पुराना किस्सा के साहब घर में तीन जनरेशन है सब टीवी में घुसी है, किसी को पता नहीं कि जो इस टीवी का बिल पे करता है वो घर में आ गया कि नहीं आया। तो एक दिन जब बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने कह दिया, आज सब निर्णय कर लो, इस घर में या ये टीवी रहेगा या मैं। पत्नी ने कहा, आराम से बैठो, एक गिलास पानी पियो, इतनी रात को कहां जाओगे। सुबह को ठंडे दिमाग से बात कर लेना, टीवी के जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जाओगे तो आप, अब रात को कहां जाओगे। जैसे आपने श्रील प्रभुपाद का भी सुना है कि उन्होंने अपनी भागवत गीता ट्रांसलेशन और प्रॉपर्ट सब कुछ अपने हाथ से लिखे और वो सब की पुस्तक बन गई। जब श्रील प्रभुपाद घर में नहीं थे तो जब वापस आए वो पुस्तक गायब, ये क्या हुआ, रद्दी में बेच दी। क्यों, चाय के पैसे नहीं थे। तो सर्वप्रपात ने कहा, अच्छा ठीक है, अब या चाय रहेगी या मैं। निष्कर्ष आपके सामने, चाय रह गई और उस चाय ने आप सबकी जान बचा ली। अगर जो उस समय उनकी पत्नी ने चाय छोड़ दी होती तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। अच्छा किया उन्होंने नहीं छोड़ी। और श्रील प्रभुपाद को छोड़ दिया हमारे लिए। आगे इसमें बताया है कि वह उनका प्रतिकार करने में भी समर्थ नहीं रहता। इस देश में, भारत में, भारतवर्ष में एक लॉ है, उसका नाम है हिंदू फैमिली लॉ। उसके अनुसार जो संपत्ति, घर, दुकान, जो कुछ भी आपको अपने पिता से प्राप्त हुआ है उसका क्या करना है, अपने पुत्र को पास ऑन करना है, कंपलसरी है ना, कंपलसरी ऑटोमेटिक, लेकिन कंपलसरी भी है। वो उसको विल कर दे कि नहीं मुझे किसी और को देना है, नहीं कर सकता है। विकसित देशों में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी रियलिटी तो वही है। कोई बूढ़े की परवाह नहीं करता, वृद्धावस्था के कारण निर्बल होगा। कोई यहां तो कोई नहीं है जो वृद्धावस्था के कारण निर्बल हुआ फील कर रहा हो, कोई है? कौन कौन वृद्धावस्था के कारण निर्बल फील कर रहा है यहां? मैं अकेला ही हूं, बस एक मैं ही हूं। मैं वृद्धावस्था के कारण निर्बल फील कर रहा हूं। आप लोग चाहे एक्सेप्ट करो चाहे नहीं करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तब इसका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं रहता, वह अधिकाधिक चिंतित होता है और अपनी दयनीय स्थिति पर पछताता रहता है। दयनीय स्थिति पर क्या क्या पछताता रहता है, के जब शरीर स्वस्थ था सब कुछ, उस समय भजन किया नहीं। अब बुढ़ापे में भजन में मन नहीं लग रहा, कैसे लगेगा? किसी को कोई प्रश्न है? तात्पर्य में इतना ही था, अगर कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो और आपको इसके बारे में आगे बता सकते हैं। कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? सबको सब कुछ मालूम है यहाँ, किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है? तो मैं आपको हरिद्वार का एक किस्सा सुना देता हूँ। एक बार हम हरिद्वार नहाने के लिए गए तो कुछ भक्त, कुछ लोग वहाँ पे कोका कोला की बॉटल, उन दिनों 200 ग्राम की 200 मिलीलीटर की कांच की बॉटल आती थी, वो फ्री बांट रहे। जो कोई आ रहा है हमें देख के तो स्पेशली रोक लिया कि बाकी सब तो आम लोग, ये प्रभु जी तो धोती कुर्ता पहन के आ रहे हैं, इनको तो दो बोतल दो। हमने रिफ्यूज कर दिया, आगे बढ़ गए। लेकिन एक भक्त और थे हमारे साथ में, उनको एक तो क्रोध आया कि हमारे प्रभु जी को कोका कोला ऑफर कर रहा है, बदतमीज, इतना भी नहीं पता प्रभु जी नशा नहीं करते। और दूसरा कि ये कोक फ्री बांट रहा है, ये क्या बात हुई? चलो प्रभुपाद ने मना किया कोक पीने को और ये दुनिया में फ्री बांट रहा है। तो वो लोगों से पूछने के लिए गए, क्या बात है, आप क्यों कोक फ्री दे रहे? हमें कुछ नहीं पता जी, हम तो नौकर लोग हैं, वो मालिक हमारे वहां खड़े हो, जो चार आदमी खड़े हैं सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए बिल्कुल नया वाला, वो मालिक है हमारे। तो ये प्रभु जी हमारे इस्कॉन के ही है, उनके पास चले गए पूछने के लिए, भाई क्या कर रहे हो, क्यों आप लोग कोक फ्री बांट रहे हो? प्रेम से प्यार से पूछा तो उन्होंने कहा, देखो जी बात ऐसी है कि हमारे पिताजी का देहांत हो गया है कल रात को, आज सुबह हमने यहां लाके उनकी अंत्येष्टि करी है और अब हम उनके नाम से दान कर रहे हैं। अब ये प्रभु जी प्रचारक हैं, ऐसे आसानी से कुछ सुन के वापस नहीं आते। तो उन्होंने कहा, आप दान तो कर रहे हो अपने पिता के नाम से, लेकिन ये कोई दान है क्या? कोका कोला ये कैसा दान है? कि देखो जी बात ऐसी है, इतना तो हमें पता है कि कोका कोला दान करने की नहीं होती वस्तु, लेकिन क्या करें हमारी परिस्थिति ऐसी है। ये क्या हुआ आपकी परिस्थिति ऐसे कैसे होगी? कि देखो जी बात ऐसी है कि हमारे पिताजी मरणासन्न थे, हम चारों पुत्र उनके चारों तरफ खड़े थे, हम उनसे कह रहे थे पिताजी आपके प्राण अभी निकलने वाले हैं, प्राण निकल जाए उससे पहले भगवान का नाम लो, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो शिवजी महाराज की जय, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हमने जितने भी नाम बताए उन्होंने हर एक का जवाब कोका कोला से दिया, उनकी जबान से कोका कोला कोका कोला कोका कोला के अलावा और कुछ निकल ही नहीं रहा था। 30 साल से हमारी कोका कोला की एजेंसी है, वो वहीं उस पे सबसे आगे वो ही बैठते थे। तो सारा जीवन कोका कोला बेच बेच के अंत में जो याद रह गया उनको तो कोका कोला। तो ये लोग बता रहे हैं हमारे प्रभु जी को कि जी हमें ऐसा लगा कि शायद उनकी यही इच्छा होगी इसीलिए वो कोका कोला कहते रहे। तो हमारे तो अपने घर की एजेंसी है, हम सबको फ्री कोका कोला बांट रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पिताजी की यही इच्छा होगी कि उनके नाम से सब लोगों को कोका कोला बांटी जाए, तो इस वजह से हम कोका कोला बांट रहे हैं। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे करेंगे विचार, विचारों का असर कहां पड़ेगा? जीवा पे, जीवा का असर। और एक के बाद एक डिक्लाइनिंग प्रोसेस। इसलिए हालांकि कलयुग में बुरे विचार का पाप नहीं लगता, लेकिन फिर भी बुरा विचार बुरा ही है, क्योंकि वो कल को विचार उस सही तरफ को नहीं जाने वाला, वो बुरा विचार हमें बुराई की तरफ ही ले जाएगा, अच्छाई की तरफ वो बुरा विचार नहीं ले जाएगा। तो चाहे बुरे विचार से पाप नहीं लगे, उसके कर्म का फल नहीं प्राप्त हो, लेकिन कुछ पुण्य भी प्राप्त नहीं होगा। और अगर हम कोई अच्छे कार्य करने का मन में निश्चय भी कर लें या मानस रूप से भी कर लें तो उसका फल राइट अवे। कलयुग में अगर जो कुछ अच्छा नहीं किया लेकिन अच्छा करने की इच्छा कर ली, उसका फल हम कलयुगी जीवों को फौरन प्राप्त हो जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी जो राधा कुंड पे निवास किया करते थे, एक बार बहुलाष्टमी का पर्व आने वाला था तो उन्होंने विचार किया क्यों नहीं मैं एक बहुत बड़ा भंडारा कर लूं, सारे इधर उधर के सब गांवों को सबको निमंत्रण देके बुलाऊंगा और राधा कुंड के फेस्टिवल उत्सव होगा, सबको पता चलेगा बहुलाष्टमी राधा कुंड ये वो। फिर उन्होंने सोचा ये सब हो तो जाएगा लेकिन एक परेशानी है, बैंक अकाउंट मैंने कभी खुलवाया नहीं था, क्रेडिट कार्ड मुझे कभी किसी ने दिया नहीं और कैश के हिसाब से जेब भी मेरी नहीं है, कैश तो बाद में रखा जाएगा जब जेब ही नहीं मेरे तो ये जरा सा कपड़ा यहां बांधता हूं उसमें पॉकेट तो है ही नहीं। तो बिना पैसे के बिना किसी चीज के कैसे होगा ये सब? तो उन्होंने अपना माता पीट लिया कि देख तूने बाबा जी का संन्यास लिया हुआ है और तेरे मन में ये बड़े बड़े विचार आते हैं, सो जा चुपचाप, ये सब काम एक बाबा जी के बस का नहीं है। सोने जाने लगे तो उनको लगा कि अगर जो मेरे मन में विचार है तो मानस रूप से कर लेता हूं। मानस रूप से उन्होंने जमीन में गड्ढा खोदा, बड़े बड़े लक्कड़ उसमें लगाए, उनको जलाया, इतना बड़ा पतीला ले आए, मानसिक रूप से उस पर रख लिया, उसमें दूध डाला, चावल डाले, चीनी डाली, सब कुछ किया, खूब कढ़ाया उसको, बहुत अच्छी वाली खीर बनी। अब सारे आसपास के गांवों को बुलाया, हजारों लोग आए, सबको खूब बांटी मानस रूप से। जब सब खा पी के छक के चले गए तो एक समस्या कि वो इतना बड़ा वाला जो पॉट था उसमें से इतनी बच गई। इतना बड़े वाले पॉट में अगर इतना बच जाए तो वो तो बहुत है, कई बाल्टी हो गया। लेकिन समस्या ये नहीं थी, समस्या एक और थी। उनके घर फ्रिज नहीं था। क्या अब इसका क्या होगा, फ्रिज तो है नहीं। तो उन्होंने सोचा चल मैं खा लेता। अब वो इतने बड़े वाले पॉट में इतनी खीर वो उन्होंने खा ली। अगले दिन मंगल आरती का टाइम हुआ तो सो के ही नहीं उठे। लोगों ने आके देखा, बाबा जी तो अचेत से वृंदावन में रूप गोस्वामी को खबर भेजी, रघुनाथ बीमार हो गया। रघुनाथ बीमार हो गया, ठीक है वैद्य जी को भेजते हैं। वैद्य जी गए, नब्ज चेक करी और बता दिया इसको अपच हो गई। इसने बहुत ज्यादा खीर खाई है। अभी उन्होंने एक बूंद भी खीर नहीं खाई है, सब कुछ मानस रूप से। लेकिन वास्तव में कितना खाते थे वो, एक पत्ते में जितनी छास आ जाए, एक पत्ते में जितनी छास आ जाए वो सारा दिन का भोजन था उनका। तो उन्होंने सोचा मानस रूप से ही तो खाना है, मेरा भोजन तो उतना ही है, वो उतना ही रहेगा, खाली ये कड़ी ये खीर तो मैं मानस रूप से खा रहा हूं। लेकिन वैद्य जी कह रहे हैं अपच हो गई। जगत गुरु शिरोप्रपाद की ग्रंथरा श्रीमद भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे।